मराठी हिंदी मराठी
समजू शकते पण तरी पण थोडं काही
संवाद प्रश्नोत्तर आहे प्रश्नोत्तर है
प्रश्नोत्तर आहे आपण बघते प्रश्न ऐसा है मेरा कि जैसे हम बार बार ये चर्चा होती है कि भगवान ने कहा या फिर हम शरीर नहीं हम आत्मा है, मैं अपने आप को स्वयं को सबको आत्मा के रूप में देखना है, तो प्रैक्टिकल में कैसे करना चाहिए कि हम सबको आत्मा के रूप में देखने से वो प्रयास तो करें लेकिन हर समय वो सफल नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करें?
स्वयं से शुरुआत करना होगा करनी होगी, औरों को आत्मा के रूप में देखने के पहले हम खुद ही आत्मा है कि नहीं इसका कुछ पता कुछ अनुभव कोई साक्षात्कार चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं सब तो जानते हैं ना सब आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं है, जानते हो कि नहीं? कि जब भी शरीर की ओर देखते हैं तो इस बात का स्मरण रखेंगे कि ये शरीर है तो फिर आत्मा भी होना चाहिए, देहात्म बुद्धि हाँ देहात्म बुद्धि यश्यात्म बुद्धि यश आत्मा बुद्धि पुनपैत्रिधातुके तो होना तो है समदृष्टि वाले विद्याभिनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तिनी शुनि जैव सौभाग्य च पंडिता समदर्शन पंडित समदृष्टि होती है और शरीर तो अलग अलग है किंतु तो फिर वो कैसे समदृष्टि कैसे क्या सम है क्या सामान्य है हर शरीर में, शरीर तो एक तो ब्राह्मण का है एक चांडाल का है कुत्ते का है हाथी का है गाय का है, ऐसे तो नाम ले दे भगवान ने चार पांच छह नाम दिए और कहा कि पंडित समदर्शन तो सम तो आत्मा ही है, आत्मा सामान्य है कॉमन फैक्टर है हर शरीर में तभी तो समदृष्टि होगी, नहीं तो हम क्यों शरीर देखेंगे? स्पेशली ब्रह्मचारियों के लिए जब तक वे या ब्रह्मचार्य पालन के लिए ब्रह्मचारी को मैं आत्मा हूँ इस बात का स्मरण इस बात का साक्षात्कार इस बात का चिंतन मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ ब्रह्म ब्रह्मचारी सोचेगा कि मैं शरीर हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष है तो फिर स्त्री भी चाहिए संसार में, इस प्रकार के संबंध है या इस प्रकार के द्वंद्व है। द्वंद्व की शुरुआत तो शरीर के स्तर से हो जाती है। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के लिए तो परमात्मा या भगवान चाहिए, और पुरुष का शरीर है तो फिर स्त्री चाहिए। डिवाइन लाइफ सोसाइटी सुना, उनके शिवानंद स्वामी उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, वो ग्रंथ मुझे SS पाटिल सबराव शामराव हमारे इंजीनियर उनके पास था जब वे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे और हम लोग साइंस कॉलेज में महात्मा गांधी संगले में, तो उनके पास उपरांत हमने देखा वीर्यनाश ही मृत्यु है ऐसा सब टाइटल में लिखा था, ब्रह्मचर्य और फिर वीर्यनाश ही मृत्यु है, तो वीर्य की रक्षा ही जीवन है, जीवन तो ब्रह्मचर्य जीवन जीवन है, नहीं तो मरण है। तो उनका ब्रह्मचारियों के लिए ये उपदेश या आदेश या सुझाव कि आप स्वयं ही आत्मा के स्तर पर रहो, मैं आत्मा साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस स्तर पर नहीं रहेंगे तो फिर राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, बद्ध जीव द्वंद्व में फंसता है या पीसा जाता है और मोहित होता है। एक तो काम तो साधक है, हर तो साक्षात्कारी पुरुष आत्म साक्षात्कारी भक्त साक्षात्कारी नहीं है, तो कम से कम हम ज्ञान से शुरुआत कर सकते हैं ताकि विज्ञान तक पहुंच जाए। तो मैं आत्मा हूँ जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जीव कृष्ण दास ही विश्वास कर लो तो और दुख न हो। प्रतिविनोद ठाकुर कहते हैं अगर कोई समझता कि मैं जीव हूँ और ये जीव कृष्ण दास है ऐसा विश्वास दृढ़ विश्वास होता है तो इसका लाभ है दुख न हो कर लो तो और दुख होना, और उसके लाभ भी ध्यान में रखते हुए हम स्वयं को थोड़ा प्रेरित कर सकते हैं। इसके लाभ भी तो है, आत्म साक्षात्कार का लाभ है, ब्रह्मचर्य पालन का लाभ है, मैं आत्मा हूँ इसको जानने का लाभ ही लाभ है। हूँ, इतना केवल जान कर ही नहीं चलेगा, आत्म साक्षात्कार के लिए फिर अधिक अधिक उस आत्मा की पुष्टि करनी होगी, आत्मा का पोषण करना होगा, ताकि हम हमारी आत्मा तो अभी नहीं के बराबर है कि नहीं पता भी नहीं, एक भक्त कह रहे थे, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट श्योर, तो पता नहीं कि मैं आत्मा भी हूँ कि नहीं हूँ, कौन ये बाह्य शरीर है, इसमें हम कितना फंसे हैं, क्या सचमुच में आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, क्या कौन हूँ, शायद आत्मा नहीं हूँ। एक बात तो अपनी विनम्रता से विचार ऐसे व्यक्त कर रहे थे। आत्मा का जैसे ख्याल करेंगे, खाद्य और पेय से फिर आत्मा के हम महात्मा होंगे, फिर औरों को भी आत्मा के रूप में देखना प्रारंभ करेंगे, या साधक के रूप में सोचना तो प्रारंभ करेंगे, और आत्मा है और केवल शरीर नहीं, केवल मैं अकेला ही आत्मा नहीं हूँ, और शरीर है तो और भी आत्मा है, तो इस ज्ञान के साथ शुरुआत कर सकता है। हमें दया भाव नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रचार में नहीं जाते, प्रचार तो जिसमें दया है वो प्रचार कर सकता है, दया के बिना नहीं तो हम लोग क्यों जाए, सर्वभूत हिते रहता है, क्यों क्यों हम लोग प्रचार करें। दया का भाव होने से और भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं हमारे, कुछ सही कोई गलत, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो और उनके प्रति दया कृपा का भाव, लेकिन हम में अगर वो नहीं है तो औरों का आदेश है, आचार्यों का आदेश है, गुरुजनों का आदेश है, इसीलिए हम लोग प्रचार में जाते ही है, तो उनकी कृपा, वो कृपालु वे दयालु है, या चैतन्य महाप्रभु दयालु, उन्होंने कहा जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, इसीलिए हम जाते हैं, हमें तो दया नहीं है, लेकिन उन वे बड़े दयालु है, तो उनके आदेश के अनुसार हम प्रचार किए जाते हैं। हमको तो ज्ञान नहीं है हम आत्मा है या और भी आत्मा है, आत्मा के रूप में औरों को देखो, और लेकिन और कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, और सभी आत्मा आत्मा ही आत्मा है, तो हम थोड़ा साधक के रूप में उस विचार में स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः कुर्मो अंगानि सर्वशः, वो भी है, इंद्रिय का विषय देखा, इंद्रिय का विषय देखा और शरीर को ही देखा, तो अगर हम लोग आप अनुभव नहीं कर पा रहे कि आगे का शरीर आत्मा है या उस शरीर में आत्मा है, आगे का स्त्री का शरीर या ऐसा कोई रूप है, शरीर के अतीत या शरीर से परे नहीं पहुंच सकते सामने वाले शरीर के, तो फिर भगवान कहते हैं फिर वहां से अपनी इंद्रियों को समेट लो, जैसे कछुआ अपने उसके हाथ पैर फैलाए रहता है कहीं खतरा है तो समेट लेता है, तो कोई रूप है तो उस भौतिक रूप का ही स्मरण हो रहा है, सामने वही आ रहा है, आत्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, दया भाव या कृष्ण भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर वहां से चले जाओ, जाओ अपने इंद्रियों को कछुआ समेट लेते हैं अपने अंगों को, तो भगवान का ऐसा आदेश है। और ये भी कारण है ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचारी वन में रहते हैं, या ब्रह्मचारी आम जनता से थोड़ा दूर रहते हैं, हट के रहते हैं, जहाँ अन्य शरीर अन्य रूप नहीं है या कम है, ताकि ऐसे 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 स्थल में अपने विचारों का मंथन या तैयारी कर सकते हैं आत्म साक्षात्कार की, और भी आत्मा है और शरीर है, तो शरीर को ध्यान नहीं आत्मा की ओर, दृष्ट्वा मा गा मोहावेशम, शंकराचार्य मारी स्तन भरी, मारी को देखा सदे सभी रूप है, तो चिंतय बारम बारम, उस पर विचार करो कि वो शरीर मांस, उसमें भी मांस है या उसमें भी हड्डी है, उसमें रक्त है, उसी का विकार उसी की विकृति है, जिन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है वही तत्व, वही पृथ्वी आप तेजी वायु आकाश, तो उस शरीर में भी है, तो ऐसा अगर सोच सकते हैं सोचने के दो प्रकार बताए जाते हैं, एक को कहा है अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो सामने किसी रूप को देखा तो ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे शंकराचार्य कह रहे हो तो वो शरीर तो बैग बोन्स है, उसमें भी तो हड्डी है, उसमें भी तो रक्त है, उसमें तो उसमें खून है, उसमें ये जो सोचना ये ऑब्जेक्टिव हुआ, उसे प्रभावित नहीं हुए, उसको थोड़ा एनालाइज करके उसका तुलनात्मक दृष्टि से सचमुच है क्या, थोड़ा रुक जाता है मेरा ठीक है इसका, तो शंकराचार्य कहते हैं सोचो तो सही, चिंतय बारम बारम, बार बार सोचो तो सही। तो ये स्तर वैसे ऊंचा है ऐसा अगर सोच सकते हैं, लेकिन अधिकतर सोच हमारे कमजोरी के कारण, हमारे देहात्म बुद्धि के कारण, हमारी इंद्रिय वशीभूत या काम वशता भी है, उसके कारण हमारा सोच तो सब्जेक्टिव होता है, हम लोग उससे प्रभावित होते हैं उस रूप से, उस परिस्थिति से या उस इंद्रिय के विषय से प्रभावित होते हैं, मोहित होते हैं, और मोहित होके फिर हम सोचते हैं। अगर हमें वो इस प्रकार का सद असद विवेक स्थापना अगर हम कर सकते हैं, जब हम आश्रम में हैं, हम लोग एकांत में हैं या संतों के भक्तों के सभा में हैं, तो यही समय है तैयारी का, दिस इज प्रिपरेशन टाइम, ताकि हमको फिर जब प्रचार में जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उसको फेस करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो उस परिस्थिति में हमें कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके संबंध में पहले ही सोचता है, वो तैयारी करके जाता है, प्रिपेयर्ड होके जाता है। ऐसी तैयारी के बिना कोई ऐसे मैदान में उतरेगा, माया के साम्राज्य में प्रवेश करेगा, तो माया तो ऐसे पिछाड़ लेगी, उसके चंगुल में व्यक्ति बद्ध जीव फंस जाता है, और इसीलिए सारी साधना है साधना भक्ति से, साधना सिद्ध, साधना से सिद्धि। तो उसी सिद्धि के अंतर्गत ही है, और उनको कैसे देखे आत्मा के रूप में, उनके शरीर से कैसे प्रभावित ना हो, वैसे व्यक्ति तो मतलब एक एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कोई व्यक्ति है, तो हर एक का सोचने का ढंग अलग अलग होता है, अपने अपने प्रकृति के अनुसार, अपने अपने तीन गुणों के प्रभाव के अनुसार। या कोई स्त्री ही है तो उसको चोर देखेगा तो क्या सो कितने सारे अलंकार पहनी हुई है, चलो मैं उसका मंगल सूत्र छीन लेता हूँ, उसका एक तो राज स्त्री, लेकिन उसका उसका ध्यान तो वो तो उनके अलंकारों से प्रभावित हो जाता है, और कोई स्त्री को शेर देखेगा तो मुझे भूख लगी है, समय समय पर पहुंचा मैं, और कोई बालक देखेगा, कोई बालक स्त्री को देखेगा तो ओह मम्मी मम्मी, उसको शायद अपने माँ की याद आएगी, मनो माँ ही है, कोई कामी पुरुष देखेगा तो उसका फिर सोचना उसको न तो भूख है न तो वो अलंकार गहने का कोई लोभ है, उसके तो विचार और ही होते हैं। फिर दूसरा भी कोई व्यक्ति हो सकता है और कितना उसके कितने अच्छे गुण है, ये अच्छी नृत्य करती है, ऐसा कोई अच्छी लेखिका है, अच्छे ऐसी है वैसी है, उसके ऐसा चरित्र है, उसी का उसी से प्रभावित हो सकता है, उसी का ब्यूटी इज इन आईज ऑफ द बी होल्डर कहते हैं, अंग्रेज में कहते हैं। नहीं यार, तो ब्यूटी का उतना संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल लगता है कि वो अपने उस प्रकार का चश्मा पहना होता है, उसकी दृष्टि वैसी होती है, इसीलिए ब्यूटी नहीं भी है उसको सुंदर ही लगता है, और वो सुंदर ही लगता है, तो ब्यूटी तो है नहीं, लेकिन उसका इस प्रकार का आईना, तो जिस प्रकार का आईना है, रंग है चश्मे का, वैसा संसार वैसा ही दिखाई देता है। हमारी भावना का जो आईना है, चेतना का स्तर और चेतना अल्टीमेटली तो अंततो गत्वा हमारे सारे जो कार्यकलाप है, शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक या आत्मिक, हमारे चेतना से प्रभावित होते हैं, हमारे चेतना के अनुसार, हमारे भावना के अनुसार वैसा ही व्यक्ति देखता है या अपने इंद्रियों का उपयोग करता है, वैसे इंद्रियों के विषयों को आकृष्ट होता है या सावधान हो सकता है, सावधान दूर रह सकता है, सेफर डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, तो उसकी चेतना में क्या है, उसके भावना में क्या है, उसके अनुसार फिर उसका दिमाग भी वैसे कार्य करता है, उसका मन में वही बातें घुसी या फंसी रहती है, या स्वच्छ भी हो सकता है मन, तो फिर कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई रूप का आपने फोटोग्राफ खींचा, और फिर मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि, तो रिपोर्टिंग जाता है मन के पास जाता है, फिर तो मन कैसा है, कलुषित है या स्वच्छ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंगा है मन या गंदा है मन, तो फिर उस व्यक्ति का जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, फिर आँखों की है या कानों की है, कुछ सुना तो व्यक्ति एनालाइज कर सकता है, इस आवाज से सावधान रहना चाहिए, ये तो इसमें कोई चाल है, या कोई स्पर्श है, तो इंद्रिया तो बाहर तो इंद्रिया है, और उससे जुड़ा हुआ है मन, और उससे जुड़ी हुई बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा और परमात्मा है, तो बाहर से कोई प्रवेश करता है जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध नवद्वारे पूरे गेह इंद्रियों के माध्यम से तो मन तक पहुंचता है फिर। तो बुद्धि अगर हमारी शुद्ध है, विशुद्ध शुद्ध बुद्धि, तो फिर उसके अनुसार मन को और इंद्रियों को फिर आगे आदेश मिलेंगे, गेट आउट। वो एनालिसिस शुरू करेगा, मैं देख रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, ये सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, ये असलियत में है क्या, क्या इसकी ओर आकृष्ट होना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, ये अनुकूल है प्रतिकूल है, ये सारा अंदर सारी प्रक्रिया और एनालिसिस, फिर उसका जो प्रत्युत्तर है, रिस्पॉन्स है, फाइनली व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है अपने चेतना के अनुसार। फिर वो तो बुद्धि और आत्मा के, फिर आत्मा की जो चेतना है उसके अनुसार फिर बुद्धि और मन और इंद्रिया आगे की कार्रवाई करते हैं। विचारों का मंथन, उसमें ट्रायल्स एरर्स होगी, हमारे प्रयास प्रयत्न होंगे, कभी यश कभी अपयश, हाँ सब होते 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 हैं, पर हम साधना को जारी रखेंगे, हमारा अनुभव बढ़ेगा, हम जानेंगे क्या है, क्या है इसका परिणाम, क्या होता है इसका, क्या परिणाम होता है इसका। हमारे पहले के जो अनुभव है वो काम आएंगे, हम लोग गलतियों से सीखेंगे, होते हैं कुछ लोग वाइज वाइज मैन होते हैं, वाइज मराठी में शहाणा, शहाणा और मूरख, तो कहा जाता है कि टू अर इज ह्यूमन, गलती करना तो ऐसे मनुष्य गलती करता रहता है, गलती करना एक ह्यूमन है तो वो गलती करेगा, इसमें कोई ह्यूमन है तो वो गलती कर सकता है, इसमें कोई बड़ी अचरज वाली बात नहीं है। टू अर इज ह्यूमन, टू अर एरर है ना, टू अर इज ह्यूमन। लेकिन फिर जो अपने गलतियों से सीखता नहीं है, गलतियों से अपने जीवन में आगे सही निर्णय लेके सुधार नहीं करता, वो रह जाता है मूर्ख, ही रिमेन्स फूल। और जो अपने गलतियों से सीखा, गलतियाँ तो की, पहले ज़्यादा करता था, फिर कम करने लगा, फिर और भी कम, और फिर धीरे धीरे गलती करना बंद हुआ उसका, फिर गलतियों से सीखा, तो फिर वो वाइज शहाना बन गया, वाइज मैन। क्या कहते हैं हिंदी में, सयाना, बुद्धिमान तो नहीं, उसका एक कोई शब्द है, शयाना, शयाना, सयाना,
सयाना, सयाना, सयाना।
तो ये संग में रहने से फिर एक दूसरों के अनुभव का भी हम लाभ उठा सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई सारी गलती करके हम कोई सीखना उन गलतियों से, और उन्होंने भी गलती की होगी, वो उसने क्या सीखा वो भी हमको बता सकता है, तो फिर हमको वो गलती करके फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है, और सीखा है सबक को बता सकता है मैंने ऐसे ऐसे किया इसका परिणाम ऐसा ऐसा होता है। फिर बोध ही अंत है परस्परम, फिर संघे शक्ति कलव युगे इस शक्ति मिलती है हमको संघ से, संघ में संघ मिलता है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मतलब संघ में। हम लोग क्यों आते हैं संघ लेने के लिए, संघ में आते हैं तो इस संघी शक्ति, संघी शक्ति नहीं संघी शक्ति, संघी शक्ति कलयुग, कलयुग में संघ में दोनों कह सकते हैं सर, संघ में शक्ति है। फिर हम जिस प्रकार का दुकान चलाते हैं तो हमें मदद तो वैसे ही और दुकानदारों से हो सकती है कि उनका दुकान भी वैसा ही, उनका बिजनेस भी वैसा ही है, तो वैसा ही दुकानदार हमको कुछ सहायता कर सकता है। हमारा इनमें ये ब्रह्मचारियों का दुकान है या हम ब्रह्मचारी है तो ये ब्रह्मचारियों का परिवार, और भी कई प्रकार के लोग या श्रेणी या विभाग या है इसमें से एक ब्रह्मचारी स्पीसीज, ब्रह्मचारी योनि में जो है तो वो एक दूसरों को ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में, ट्रेड की कोई ट्रिक्स या कोई युक्ति कोई कुछ सिखा समझा सकते हैं। अकेले रह के ब्रह्मचर्य का पालन इस कलयुग में कठिन है, ऐसे ही कई संसार में अकेले रह, क्योंकि कई सारी फोर्सेस है इस जगत में, कई सारे प्रभाव है, और माया तो डिवाइड एंड रूल करती है उनको, औरों से अलग करके फिर अपना प्रभाव जमाती है। तो जब तक हम इकट्ठे हैं साथ में हैं तो फिर माया के लिए कठिन होता है अपना प्रवेश, अपना प्रभाव डालना। तो अच्छा है कि आप ब्रह्मचारी भक्तों का साथ में रहते भी हो, और फिर सप्ताह में एक दिन संग भी शुरू किए हो, तो उस संग में उस इष्ट गोष्ठी में कुछ विचारों का आदान प्रदान, कुछ एक दूसरों के गलतियों से भी सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं। वही हम अख्यति पक्षति षड्विधम षड्विधम प्रीति लक्षणम, का आपसी स्नेह है एक दूसरों के प्रति, घनिष्ठ संबंध है, ये भी अनिवार्य है, आवश्यक है, अच्छा है, होना चाहिए आपसी में संबंध। नहीं तो वैसे जीव तो संबंधों के खोज में रहता है, जी तो चाहता या जीव चाहता है संबंध, तो ऐसा फिर भक्तों का सकारात्मक ब्रह्मचारियों का ये संबंध नहीं प्राप्त होने से जो हम संबंध की खोज में है यहाँ नहीं मिला, वो संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर और खोज में रहेगा और कहीं देखेगा, फिर वो संसार के लोगों से संबंध संपर्क बढ़ सकते हैं, या फिर स्त्रियों के विचार या स्त्रियों का संबंध संग, हम लोग तो रिक्त तो नहीं रह, खाली तो नहीं रह सकते, कुछ तो भरना तो चाहिए, तो ये सकारात्मक ये जो संघ है भक्तों का, ब्रह्म अन्य ब्रह्मचारियों का संबंध, अगर जी भरा नहीं है तो फिर खाली खाली कुछ, तो फिर हम और किसी को स्थान देने की संभावना है, खोजेंगे किसी को बिठाएंगे मन में दिल में, तो उनको निकालना है तो भक्तों से संतों से संबंध। फ्रेंडशिप बताइए शास्त्रों में, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, श्रद्धालुओं पर कृपा, और जो असुरी संपदा वाले हैं उनकी उपेक्षा, उनसे दूर रहना, ये शास्त्रों का आदेश है। एक ही प्रश्न हुआ, एक ही उत्तर, एक ही प्रश्न का शायद हर एक एक प्रश्न शायद लेके आया होंगे, लेकिन
काही भक्त तमोगुणामध्ये असतात, काही भक्त आणि काही सत्वगुणामध्ये असतात, ज्यावेळी एकत्र येतात मॅनेजमेंट असो किंवा कुठली सेवा असो, त्यावेळी द्वंद्व होत आहे कसं काय।
तो सत्वगुण अर्थात कोणाचा प्रभाव अधिक आहे, सत्वगुणी अधिक प्रभाव टाकतो आपल्या सत्वगुणाचा इतरांच्या वरती, की तो तमगुणीच आपलं वर्चस्व स्थापित करतोय समोरच्या माझ्या एकत्रित झालेल्या भक्तांच्या वरती, त्यावरती अवलंबून राहत नाही। तिन्ही गुणामध्ये नेहमीच शर्यत लागलेली असते. तिन्ही गुणाची सत्व रज तम कोण वाढती राहतात, एक दुसऱ्याला पाय ओढत राहतात, खरे ढकत राहतात. ऐ मी वरते ना अर्थून ऐ मी मारते अर्थात प्रत्येक व्यक्ती जो अधिकात अधिक वेळ सत्व गुणामध्ये राहतो सात्विक म्हणतात, पण तोही कधी कधी राजसिक रजगुणाचा रजगुणाने प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, कधी तमोगुणाने. तसंच राजसिक व्यक्ती अधिक वेळ राजसिक असतं, पण कधी कधी तो चांगुलपणा दाखवतो, सत्वगुणाचं प्रदर्शन करतो, खरं बोलतो, कधी कधी खरं बोलतो, नेहमी खोटं बोलणार. कधी कधी तमगुणी व्यक्ती नेहमीच तमागुणामध्ये, पण कधी कधी दाखवू शकतो आपला सत्वगुण रजगुण. आपलं लक्ष तर गुणातीत, त्या गुणाच्या वरती पोहोचायचं लक्षात. म्हणजे असे जे आहेत गुणातीत किंवा जे सत्वगुणी आहेत कम से कम कमीत कमी, त्यांनी त्या भक्ताचा संग घ्यायला हवा, त्या सत्वगुणाचा करंट आपल्यामध्ये वाहू द्यायला हवा, जेणेकरून तो व्यक्तीही तमगुणातून वरती रजगुणापर्यंत येऊन किंवा तेथवणीवरती सत्वगुणामध्ये येऊन स्थिर होऊ शकतो. आपणा स्थापना तत्कलो शूद्र संभव कलियुगामध्ये शूद्र आहेत म्हणजे तमगुणी आहेत, अडचण आहे, पण पोहोचायचं आपणाला तिन्ही गुणाच्या पलीकडे. त्यासाठी सर्व साधना आहे. जेवढा अधिक काळ आपण त्या साधना करू, साधनेच्या मदतीने आपण या गुणाच्या वरती पोहोचण्याचा एक सतत प्रयत्न आहे. साधनेच्या नियमाच्या काही हात पाय कमजोर असतील किंवा काय जखम झाली वगैरे, तर आपण चालता येत नाही, लंगड तर आपण ते काय करतो, क्रचेस काय म्हणतात, कुबड्या घेतो. किंवा हे जे साधनेचे जे नियम आहेत, साधना भक्तीच्या नियमाच्या आधारानं मदतीनं आपण उभं राहण्याचा चालण्याचा आपला प्रयत्न असतो. आणि मग कुबड्याचा वापर करणारा व्यक्ती त्याचं लक्ष असतं की एके दिवशी कुबड्या फेकून द्यायच्या, कुबड्याशिवाय आपण चालायचं, धावायचं, पळायचं. साधनेच्या नियमाच्या मदतीनं विधी विधान आहे, आपण उभं राहायचं, जागृत व्हायचं, गुणातीत पोहोचायचं हा प्रयत्न आहे. त्या कोबड्या कोणी भक्त असू शकत, कोणा भक्ताच्या मदतीनं आपण उभं राहण्याचा प्रयत्न करतो, तो आपला हात धरून वरती उभं करण्याचा प्रयत्न करतो. अशा प्रकारे दुसऱ्याची मदत करायची आहे. उद्धरेत आत्मनो आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, कृष्ण म्हणतात उद्धरेत हे माणसा हे जीवा उद्धरेत उद्धार कर तू आपला, उद्धरेत आत्मनो आत्मानम आत्मनो आत्मानम, आत्मनो आत्मा, आत्मनो आत्मानम, तो आत्मा जा उद्धार मनानी कर, मनाना मोठा हो उत्सल स्वतःला तू न अवसादयत, स्वतःला खाली पडू देऊ नकोस, कोसळू नकोस, उद्धरेत न अवसादयत, आत्मनो आत्मानम, आत्मैव आत्मना बंधु, आत्मैव रिपुर आत्मना। तो आत्मास या ठिकाणी आत्मा म्हणजे मन, मनस तुझा कधी मित्र बनत आहे, मनस तुझा कधी शत्रू बनत आहे, मनाला शत्रू बनवू नकोस, मनाला मित्र बनवून किंवा मनालाही कृष्णाचा मित्र बनवून कृष्ण भावनेमध्ये भावना भावित करून त्याच्या मदतीनं तो उठ उभा राहा, जाग्रत उत्तिष्ठ जाग्रत। गोंधळात नाही पडायचं, एक दुसऱ्यांना मदत करायची, गोंधळातून मोहातून भ्रमातून द्वंद्वातून मुक्त होण्यासाठी। थांबायला हवं की नाही?
Mm-hmm.